नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और उनके जापानी समकक्ष के बीच लॉस एंजलिस में बृहस्पतिवार को होने वाली बैठक के दौरान भारत जापान के साथ व्यापार समझौते की समीक्षा की मांग करेगा। जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री निशिमुरा यासुतोशी हैं। इस तरह की वार्ताओं में आमतौर पर दो देश अपने संबंधित उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुँच चाहते हैं और उन मुद्दों को हल करते हैं जो व्यापार में बाधा डाल रहे हैं। गोयल ने यहां संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि यह समीक्षा काफी समय से लंबित है और मैं जापान के अपने समकक्ष के साथ इस मुद्दे को उठाने जा रहा हूं। उन्होंने अभी कुछ समय पहले नए मंत्री के रूप में पदभार संभाला है, इसलिए मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा। गोयल से पूछा गया था कि क्या जापान के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA की समीक्षा की जा रही है, जिसके जवाब में उन्होंने उक्त बात कही। भारत और जापान ने अगस्त 2011 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA लागू किया था। इस समीक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि घरेलू इस्पात उत्पादकों ने जापान से हॉट रोल्ड स्टील और अन्य किस्म के इस्पात उत्पादों के आयात में वृद्धि की कई बार शिकायत की है। ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार पर गोयल ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई संसद इस साल के अंत तक व्यापार समझौते को मंजूरी दे सकती है। वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सालाना बजट तैयार करने का काम 10 अक्टूबर से शुरू करेगा। ये प्रक्रिया घरेलू अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और विकसित देशों में मंदी की आशंका के बीच शुरू हो रही है। अगले वित्त वर्ष के बजट में उच्च मुद्रास्फीति, मांग को गति देने, रोजगार सृजन तथा 8% से अधिक की वृद्धि को बनाए रखने के महत्वपूर्ण मुद्दों पर गौर करने की जरूरत होगी। इससे पहले दिन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि महंगाई के रिकॉर्ड उच्च स्तर से नीचे आने के साथ ये मुद्दा अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है और अब सरकार के लिए प्राथमिकता रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि को गति देना है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल और सीतारमण का ये पांचवा बजट होगा, साथ ही 2024 के अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनाव से पहले अंतिम पूर्ण बजट होगा। आर्थिक मामलों के विभाग के बजट इकाई के बजट परिपत्र 2023-24 के अनुसार सचिव वॉय की अध्यक्षता में बजट पूर्व बैठकें 10 अक्टूबर 2022 से शुरू होंगी। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों को बजट पूर्व बैठकों के पूरा होने के बाद अस्थायी तौर पर अंतिम रूप दिया जाएगा। संशोधित अनुमान RE को लेकर बैठकें नवंबर 2022 के मध्य तक जारी रहेंगी। वित्त वर्ष 2023-24 का बजट संसद के बजट सत्र के पहले चरण में 1 फरवरी को पेश किया जा सकता है। बजट सत्र आमतौर पर जनवरी के अंतिम सप्ताह से शुरू होता है। व्हाइट हाउस ने आरोप लगाया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऊर्जा को हथियार बना रहे हैं। पुतिन ने बुधवार को धमकी दी थी कि अगर अमेरिका रूसी निर्यात की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश करेगा तो वह पश्चिम को ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरह बंद कर देंगे। साथ ही उन्होंने यूक्रेन में मॉस्को की सैन्य कार्रवाई को तब तक जारी रखने की कसम खाई जब तक कि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर लेते। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केरेन जीन पियरे ने बुधवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा, इससे पता चलता है कि पुतिन एक बार फिर अपने शब्दों और अपने कार्यों से ऊर्जा को हथियार बना रहे हैं। हालांकि राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूरोप में हमारे सहयोगियों ने पहले ही इस कदम की भविष्यवाणी की थी। हम इस स्थिति के लिए महीनों से तैयारी कर रहे हैं। हमने मूल्य सीमा तय करने के विभिन्न विकल्पों पर चर्चा की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने यूरोप में प्राकृतिक गैस के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि वह विकसित देशों के समूह G7 की घोषणा के अनुरूप रूस के तेल आयात पर एक मूल्य सीमा लागू कराने के लिए संकल्पबद्ध है। अमेरिका का कहना है कि रूसी तेल के दाम की सीमा तय करने का प्रभावशाली तरीका यूक्रेन में रूस के गैर कानूनी युद्ध के लिए धन जुटाने के मुख्य स्रोत पर तगड़ी चोट करेगा। विदेशी कोषों की आवक और वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के चलते शेयर बाजार बृहस्पतिवार को बढ़त के साथ खुले। इससे पहले लगातार दो कारोबारी सत्रों में बाजार को गिरावट का सामना करना पड़ा। इस दौरान 30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 550.73 अंक चढ़कर 59,569.64 पर पहुंच गया। इसी तरह व्यापक NSE निफ्टी 156.1 अंक बढ़कर 17,780.50 पर था। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स के सभी 30 शेयर हरे निशान में रहे। एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, भारतीय एयरटेल, ICICI बैंक, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फाइनेंस बढ़त दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में शामिल थे। अन्य एशियाई बाजारों में सोल और टोक्यो के बाजार हरे रंग में कारोबार कर रहे थे, जबकि शंघाई और हांगकांग में गिरावट हुई। अमेरिकी बाजार बुधवार को तेजी के साथ बंद हुए थे। सेंसेक्स बुधवार को 168.08 अंक या 0.28% की गिरावट के साथ 59,028.91 पर बंद हुआ था। जबकि निफ्टी 31.20 अंक या 0.18% टूटकर 17,624.40 पर बंद हुआ। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 1.05% चढ़कर $88.92 प्रति बैरल के भाव पर पहुंच गया। शेयर बाजार के अस्थायी आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने बुधवार को शुद्ध रूप से 758.37 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।